તારીખ 12/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 472 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 97
ज्ञान को समय ज्ञान का बीज रूप ज्ञान को भावभाषण को और उसी को महत्व दर्शाने के लिए यहाँ सुधारस कहते हैं। मोक्ष मार्ग में इसके सिवा प्रवेश नहीं होता। समय दर्शन समय ज्ञान जो प्रारंभ है मोक्ष मार्ग का, इसका एक बीज रूप ज्ञान होता है। इसके बिना किसी को ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, इसलिए इसका महत्व है। जैसे कि कोई भी परिणाम है, तो सामान्य सिद्धांत पर विचार करते हैं, कोई भी परिणाम है इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, एक हम प्रश्न उठाते हैं।
बराबर,
जैसे शास्त्र ज्ञान है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान है उसका, या शुभ राग है, तो उसका मूल्य कैसे किया जाए। जिस जीव का परिणाम है उस जीव का लक्ष्य कहाँ है, उस पर इस परिणाम का मूल्यांकन होना चाहिए। तो मूल्यांकन यथार्थ होगा, वरना मूल्यांकन यथार्थ नहीं होगा। शास्त्र ज्ञान तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, लेकिन लक्ष्य राग पर है, लक्ष्य पर पदार्थ पर है, लक्ष्य में लोक संज्ञा है, लक्ष्य में कुछ भी गड़बड़ है समझे, तो ये शास्त्र ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। भले ज्ञान वस्तु स्वरूप के अनुसार हो, इसका कोई मूल्य नहीं। ऐसे ज्ञानी भी भगवान की भक्ति करता है, अज्ञानी भी करता है, दोनों की एक समान लगे, या कभी अज्ञानी की विशेष लगे, ज्ञानी की उतनी विशेष नहीं लगे, कैसे मूल्य करेंगे। ज्ञानी करता भी अज्ञानी अच्छी भक्ति कर सकता है, ऐसा मूल्य कर सकते हैं क्या, और करे तो क्या सही है वो
नहीं।
क्यों? ज्ञानी का लक्ष्य आत्मा पर है, अज्ञानी का लक्ष्य राग पर है। तो ऐसा जो लक्ष्य का विषय महत्वपूर्ण है, इसका महत्व नहीं समझने से इस लक्ष्य का विषय को छोड़ करके कोई प्रवृत्ति धर्म के क्षेत्र में करता है, तो उसका कोई मूल्य
नहीं।
भटकना है, नहीं होता है तो भटकना है। हाँ, भटकना है, भटकना हो जाएगा। कृपा भी देखने क्या हुआ है कि सुभाष भाई कुछ 3 साल पहले परिचय में आए हुए हैं, और कई प्रकार के उनको पत्र द्वारा प्रत्यक्षता में कई प्रकार के उपदेश ट्रीटमेंट दे करके उनको लगा है कि बहुत पात्र सुपात्र उत्कृष्ट पात्र जीव है, इसकी योग्यता को पहचानते हुए इस बात को छेड़ी है सामने से। 472 में लिखते हैं कि हमने खुले पत्र में सुधारस के बारे में प्राय स्पष्ट लिखा था, वह सोच समझ करके इरादा पूर्वक लिखा था, चाहना से लिखा था, चाहने लिखने ऐसा लिखने का हमको खास जरूरत आवश्यकता लगी कि ये बात आपको लिखनी चाहिए, दिखानी चाहिए, दर्शानी चाहिए, इसलिए हमको लिखा। वो उनको आगे ले जाना चाहते थे, उसमें वो संशय को छेड़ा है। पहले वो 471 वाला है, वो खुला पत्र है, मैंने पोस्ट कार्ड है। लिखते हैं कि आत्मा को समाधि होने के लिए, आत्मस्वरूप में स्थिति होने के लिए सुधारस की जो मुख के मुख में बरसता है, यह एक अपूर्व आधार है। अपूर्व आधार लिया है सुधारस, जिसको भाव भाषण होता है वो अपूर्व होता है, और उसी कारण से आत्मा को समाधि होती है, आत्मा को स्वरूप स्थिति होती है, इसके बिना नहीं होती है, उतना महत्व है इसका, इसलिए हमको इस बात को बता रहे हैं। विचार करने योग्य कोई विषय है तो वो है कि ये अज्ञान दशा में सम्यक ज्ञान होने के पहले सम्यक ज्ञान का कारण रूप परिगमन है। ये कारण अज्ञान दशा में उत्पन्न होता है और इसके फल में कार्य ज्ञान दशा आती है, ऐसा विषय है। इसलिए कभी ऐसा नहीं लेना चाहिए मुमुक्षु को, हम तो अज्ञानी हैं अभी क्या करें। अज्ञान दशा में भी जितनी तैयारी करनी चाहिए उतनी तो तैयारी करो, ज्ञान दशा स्वतः आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी सहज रूप से। आत्मा को समाधि होने के लिए अपूर्व आधार है, आत्मस्वरूप में स्थिति होने के लिए भी अपूर्व आधार है, ऐसा एक विषय कृपालु देव सुभाष भाई को दर्शा रहे हैं। हम आपको ये बात बता रहे हैं कि एक अपूर्व परिस्थिति आपकी भूमिका में होनी चाहिए, बाद में आपको आत्मसमाधि आएगी, स्वरूप स्थिरता हो जाएगी। पर यह सुधारस मुख में बरसता है, मुख में नहीं, ये मुख नहीं है, मुख में नहीं, यह मुख नहीं है जो अपना जीव वगैरह है, वो तो एक उपमा लिया है, जैसे मुख में हमें रस आता है, इसलिए बात तो पर्याय रूपी मुख में उसका स्वाद आएगा। मैंने वो कार्य पर्याय में होगा, तो कार्य पर्याय में होगा तो उस वक्त आपको कोई अपूर्व कार्य हुआ है ऐसा महसूस होगा, जैसे स्वाद का अनुभव होता है, वैसा कोई ऐसा कहीं वैसा। हम बहुत साल से अध्यात्म के शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे मुख्य होते हैं, बहुत साल से अध्यात्म के शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमको तो स्वरूप का निश्चय हो गया है। क्या हमको तो स्वरूप का निश्चय हो गया है, क्योंकि आत्मा ऐसा है, हमने चारों पड़खों से सभी पहलुओं से किसी को जैसा शास्त्रकार कहते हैं ऐसा समझते हैं, जैसे श्री गुरु कहते हैं ऐसा ही हम समझते हैं, इसके हमको तो निर्धार या निश्चय हो गया है। कहते कि कोई विशिष्ट परिस्थिति है कि जैसे मुख में कोई अमीरस का स्वाद आता है, रोग मिट जाता है, कईयों का मुंह बिगड़ जाता है, कोई स्वाद ही नहीं आता, कुछ खाए अच्छे से अच्छी स्वादिष्ट चीज खाए तो कहीं हमको कुछ स्वाद नहीं आता, रोगिष्ट अवस्था में। रोग मिट जाता है तो उनको सब मीठा लगता है, अकेला बाजरे का रोटले का टुकड़ा भी चबाएगा ना तो बोलता है कि मीठा लगता है, साथ में कुछ नहीं है तो मीठा लगता है, क्यों? तो वो जो रस है, पाचक रस है, उसको हमें रस कहते हैं, वो तो इसमें मिलता है, तो उसका स्वाद आता है। ठीक उस प्रकार यहाँ इसका उपमा दिया है कि इसका महत्व दर्शाने के लिए हम कहेंगे कि एक सुधा में अमृत रस है। कैसा रस है?
अमृत
रस है ये, ऐसा एक अपूर्व आधार है। अभी भाववासन के काल में अनुभव जैसा आनंद का अमृत का स्वाद नहीं है, तो निर्विकल्प समाधि में आता है ऐसा कौन सकता है। फिर भी यहाँ इसका बहुत बड़ा नाम दिया है, भाव भाषण का बहुत बड़ा नाम दिया है। अच्छा, कोई अमृत जैसा कोई स्वाद होगा, ये जानबूझ करके इस शब्द का प्रयोग किया है। कृपालु देव के अलावा इस शब्द का प्रयोग कहीं देखा नहीं जाता है भाव भाषण के विषय में। तो ये तो सुभाष भाई को जानबूझ करके लिखा है, वो तो कहेंगे, खोलेंगे इस बात को, कहेंगे क्यों ऐसा लिखा है कि आपके यहाँ इस कुछ चर्चा चल रही है कि बीज ज्ञान कुछ होना चाहिए फिर ज्ञान होगा, बीज रूप ज्ञान कुछ होना चाहिए, तो चर्चा इनके पिताजी के समय से चल रही है और अभी भी शैला में चलती है। कभी सौभाग्य भाई ने बीज ज्ञान उसको दिया था, फिर कालिदास भाई के साथ कालिदास भाई ने उसको भी दिया था, उसको उसने दिया था, ऐसा ऐसा करके अभी चलता है थोड़ा, और चर्चा बहुत चलती है वहाँ। तो सौभाग्य भाई के पिताजी के साल से करीब 5 पीढ़ी से वो चर्चा चलती है, बीज ज्ञान का महत्व बहुत है वहाँ, और जगह ऐसा माहौल नहीं है जैसा शैला के आश्रम में आज भी है ना। तो बीज ज्ञान देते कि नहीं सबको, हाँ विज्ञान भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं,
उम्र लायक
है, मैंने तो नहीं देखा
आपी सके
नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन चलता है फिर
क्या
फिर वो प्रमाण चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कृपालु देव ने तो विज्ञान के लिए बात किया है, सुभाग भाई को विज्ञान दिया तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते, ऐसा लगे ना, जो उसको ज्ञानी मानेगा तो दूसरे को विज्ञान देने की बात करेगा। ज्ञानी होता वो तो लिखते हैं, तो ज्ञानी होना चाहिए, वो तो कहते हैं, वो तो कहेंगे इसको, इसी पैराग्राफ में कहते हैं
पिताजी ने,
हाँ लल्लू भाई को पर्चा दिया था, किसी ज्ञानी ने दिया था, उनकी बहुत सेवा किया था, वो कोई राजस्थान के कोई थे, राजस्थान में चले गए, उसका नाम सुन करके बहुत प्रभावित हुए, उनकी सेवा में कुछ समय रह गया, फिर उसका जाने का टाइम हुआ तो 4 महीने महाराज तो बहुत सामान्य स्थिति का आदमी है, दुखी भी हूँ, तो आपकी कृपा कुछ हो जाए, दुखी है मतलब कि एक आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उसने थोड़ा धक्का दिया कि देखिए महात्माओं से कभी फुटबॉल की वांछा नहीं करना चाहिए, ऐसे पैसे नहीं, आप तो बड़े महात्मा हैं, कुछ रिद्धि सिद्धि भी आपके पास है ऐसा सुना है, सुन करके तो मैं इधर आया, चुनौतियाँ भी है आपके पास, हमको थोड़ी प्रसादी दे दो तो हमारा तो कष्ट सब मिट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी धार्मिक पुरुष हैं ऐसे पैसों की या कोई संयोग की सुधार की, रोग के सुधार की, दारिद्र के सुधार की, कुछ भी प्रकार के परिवार के ऐसी वांछा करनी नहीं चाहिए,
बराबर
ऐसा महाराज में तो कुछ नहीं समझता, आप कृपा कुछ हो जाए बस इतनी बात, उसको उनके उसके ऊपर प्रेम बहुत था, उसने इसमें सेवा भी ऐसी की है, पर्चा लिखा कर दे दिया। और कोई सत्पुरुष होगा यही इस विषय का तुमको स्पष्टीकरण देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो बहुत युक्ति से वो प्रसंग बनाया जिसने बनाया उसने, कि अभी तो उसको सत्पुरुष की खोज नहीं है, अब तो संयोग की उसको पड़ी है, मेरे संयोग ऐसे हो जाए, संयोग ऐसे हो जाए, अब क्या करें, तो उनको ऐसे रखा, कोई सत्पुरुष को अपन खोजना और इसका स्पष्टीकरण दे पाएगा, दूसरे का इसमें काम नहीं है, पर कोई सत्पुरुष मिलेगा तो तेरा काम हो जाएगा, तो उसका उसने एक आधार दे दिया कि इसका स्पष्टीकरण देने वाला सत्पुरुष होगा और ये तुम्हारा कल्याण का कारण बन सकता है। अपने जीवन में कोई कई जगह जगह गए होंगे, कोई मिला नहीं, तो सुभाष भाई को देते गए, लेकिन महात्मा की दशा भी है, कोई सत्पुरुष मिलेगा वो तुमको बताएगा, वो बताएगा तो वो कल्याण का कारण हो जाएगा, उनको भी दिमाग में वो बात, वो भी खोजते फिरते थे। उसमें गोपाल देव का ख्याति शंकर थे, उनके पास गए, उन्होंने उसका जो रास था वो खोल दिया, यही काम है उसमें, तो विज्ञान का विषय है, उनको विश्वास प्रतीति आ गया और तब से उनको उसकी पहचान कर ली, तब से इसके पीछे लगे रहे।
लखन सिंह
वो कोई बात नहीं की थी, वो भी सुनने की सुना सुनी सुनाई बात है, सब कोई आधारभूत बात ऑथेंटिक कोई चीज नहीं मिलती है। इनके परिचय में आए 3 साल हो गए है, तो वही बात छेड़ते हैं योग्यता देख करके, कि अगर उनको उसमें कौतूहल हो गए, रस हो गए, जिज्ञासा हो जाए तो वो बात उसके पल्ले पड़ेगी, अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो वो बात पल्ले पड़ेगी ये बात। बिना प्रत्यक्ष सत्पुरुष भाव भाषण नहीं हो सकता। संस्कारी जीव की बात अलग, पूर्व के संस्कार वाले की बात अलग। वर्तमान समय में तो वो ज्ञानी पुरुष चाहिए, क्यों तो वो कोई बता सकते नहीं, प्रैक्टिकल साइड बता नहीं सकते। कल थोड़ी बात चर्चा में चली थी कि उसकी जो प्रैक्टिकल साइड है, कि वर्तमान जो परिणमन है उस परिणमन में वेदन ग्राह्य होना चाहिए आत्मा,
बराबर
वेदन से वो ग्रहण करने योग्य चीज है, विचार से थिंकिंग से वो बात नहीं है, और कोई परोक्ष चीज की बात नहीं है, जो प्रत्यक्ष है उसको ग्रहण करने की बात है। तो ग्रहण तो रुचि बिना होता नहीं, अत्यंत आत्मरुचि हो, ग्रहण करने की जिज्ञासा हो और अंतर अवलोकन हो तो अपने ज्ञान में से ज्ञान स्वभाव को वो आभासन में ले सकता है वेदन से। ऐसे सुधारस को कोई प्रकार से विज्ञान कहो तो हरकत नहीं है, मात्र उतना भेद है कि वह ज्ञान ज्ञानी पुरुष के जो उससे आगड़ है, यानी भाव भाषण से आगे निकल चुके हैं, अनुभव ज्ञानी है, आत्मा है, आत्मा को अनुभव, आत्मा का अनुभवी है, उसको आत्मा ही कह दिया, ज्ञानी को ही आत्मा कह दिया, आत्मा है, ऐसे जानने वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी मैंने भाववासन वाले भी दूसरा संकेत है, लेकिन इससे आगे होना चाहिए आत्मा है, उसी को आत्मा बोला, आत्मा रूप जो हुआ है, तो लिखते हैं ज्ञान का आत्मज्ञान की मूर्तिमंत आत्मज्ञान स्वरूप, सत्पुरुष उसको क्या लिखते हैं, मूर्तिमंत आत्मज्ञान स्वरूप, ऐसे सत्पुरुष ऐसा लिया है, आत्मा है और ऐसा जानने वाला जानकार होना चाहिए, जो अनजाना है इस विषय से, अनुभवी नहीं है, इसका काम इसमें नहीं है। तो ये प्रश्न का उत्तर आ गया कि दूसरा कोई दे सकता नहीं। द्रव्य से द्रव्य मिलता नहीं, एक दूसरा पैराग्राफ बीच में लिखते हैं कि द्रव्य से द्रव्य मिलता नहीं, ऐसे जानने वाले को कुछ कर्तव्य कह सकते नहीं, फिर भी वो कब कि स्वद्रव्य द्रव्य क्षेत्र का भाव में यथावस्थित समझाने पर स्वद्रव्य स्वरूप परिणामे परिणमी अन्य द्रव्य प्रत्यय केवल उदास होकर के कृतिकृत होकर के फिर कुछ कर्तव्य नहीं रहता है, ऐसा घटित होता है और ऐसा ही है। क्या है कि कृपालु देव ने द्रव्यानियोग की बात थोड़ी थोड़ी शुरू की है, पहले तो वो हरि और ईश्वर इच्छा किस बात करते रहते थे, क्योंकि वो अन्य संप्रदाय में मान्यता धराते थे तो उनकी भाषा में बात करते जाते थे, फिर कुछ समय बाद उन्होंने ये जैन दर्शन की परिभाषा शुरू किया, इसमें ये द्रव्यादि योग समीक्षा के कुछ बातें दूसरे दूसरे को एक बातें शुरू किया है। तो उसमें एक बात प्रसिद्ध है द्रव्यादि योग में कि एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जब एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को मिलता ही नहीं, स्पर्शता ही नहीं, भिन्न ही भिन्न रहता है सर्वथा, तो ऐसे जानने वाले को फिर कर्तव्य क्या रहना, तो स्वरूप मिलीन हो जाए। तो मेरे मेरे से तो किसी से, मुझे तो किसी से कोई संबंध
नहीं
है, तो उसको तो स्वरूप मलिन होने का सिवाय कोई कर्तव्य होता नहीं, बाद में कोई उसका कर्तव्य नहीं है। एक बात, लेकिन वो कब जान लिया तो ऐसा हो जाता है कि नहीं? जान लेने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्वद्रव्य द्रव्य क्षेत्र का भावे यथास्थित समझाए, अपना स्वद्रव्य में अपना आत्मा द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से यथा अवस्थित समझा, समझ में आ जाए, समझ में आकर के फिर स्वद्रव्य स्वरूप परिणामे परिणमे, अपना द्रव्य अपना स्वरूप परिणाम रूप परिणमन करने लगे और अन्य द्रव्य से बिल्कुल उदास हो जाए, केवल उदास हो जाए, तब वो कृतकृत हो जाता है, फिर उसको कुछ बाद में कर्तव्य नहीं रहता है, ऐसा घटता है और ऐसा ही है। और सभी अरविंद सिद्ध का ऐसा ही देखने में आता है, बाह्य प्रवृत्ति मुनि दशा में कम हो जाती है। ये तीन योग है, मन वचन काया का योग, उसकी प्रवृत्ति संयम पूर्वक जिनाज्ञा अनुसार संयम पूर्वक, संयम पूर्वक में भी जिनाज्ञा अनुसार संयम पूर्वक घटती जाती स्थिति, वो भी कम होती जाती है। अंते थाए निज स्वरूप मां सब प्रवृत्ति कृत कृत हो गया, क्योंकि स्वद्रव समझ में आया, स्वद्रव तो स्वरूप परिणाम में परिणम गया, स्वद्रव है वो स्वरूप परिणाम में परिणम गया, बात खत्म हो गई, उसको कुछ करना करना रहता कृत कृत हो गया। इतना लिख करके कोई आगे पीछे चर्चा चल गई, इसका एक स्पष्टीकरण ये सुधारस के पत्र में तीन पंक्ति में दे दिया है। फिर चार दिन के बाद एक दूसरा पत्र वो लिख रहे हैं, ये बीच की स्थिति है दोनों का, जो 6-7 साल का संयोग है उसमें मिडल बीच की स्थिति है। इधर जो 300 पत्र करीब है, 300 से 3-4 ज़्यादा है, ये 150 ऊपर का एक दो है, नंबरिंग दिए हैं सुबह का एक पत्र। परम स्नेही श्री सुभाग्य तथा श्री डूंगर श्री सायला, परम स्नेही लिखते हैं, आज का एक पत्र सौभाग्य का लिखा हुआ आया वह पहुंचा है। खुले पत्र में सुधारस परत्वे प्राय स्पष्ट लिखा था, वह जानबूझकर लिखा था, ऐसा लिखने से विपरिणाम आने वाला नहीं है ऐसा जानकर लिखा था। विपरिणाम मैंने कहा कोई आप कल्पना में नहीं चढ़ जाएंगे, सुधारस शब्द का प्रयोग करते हुए भी आपको ऐसी कल्पना में नहीं चल जाए कि मुंह में कुछ पानी आता होगा, ऐसी कल्पना में आप लोग नहीं चल जाएंगे, वो हमारा ख्याल में था। वरना क्या बोले कि मुख के मुख में वो बरसता है, तो जब स्वरूप का निश्चय होता होगा तो पानी भी आता होगा मुख में, मुंह में पानी भी आता होगा, जैसे मिठाई देख करके पानी आता है ऐसा आत्मा को देख कर पानी आता होगा, ऐसी बात कोई नहीं, ऐसा कोई विपरीत परिणाम नहीं आने वाला था, वो भी हम जानते थे, ऐसा जानकर लिखा था। कुछ कुछ यह बात का चर्चक जीव को, चर्चा करने वाले जीव को, जो यह बात पढ़ने में आवे तो केवल उससे निर्धार हो जाए ऐसा बने नहीं, इसकी चर्चा करने वाले को लिख के देवे तो उसको भावभाषण हो जाए ऐसा तो बनेगा नहीं, परंतु ऐसा बने कि जिस पुरुष ने ये बात लिखी है वह पुरुष कोई अपूर्व मार्ग का ज्ञाता
है
तो ये सत्पुरुष के प्रति ध्यान खींचाने के लिए हमने ये बात मार्ग का ज्ञाता ज्ञाता है इस विषय का जानकार है इसलिए इनके पास से हमको कुछ मिलने का संभव हो सकता है। विज्ञान यह पुरुष कोई अपूर्व मार्ग का ज्ञाता है और यह बात का निराकरण निराकरण मैंने स्पष्टीकरण कोई भी उलझन हो गए तो वही निकाल सकेगा दूसरा कोई निकाल सकेगा
नहीं।
उसका निराकरण उसकी ओर से होने का मुख्य संभव है ऐसा जानकर उसकी उसके प्रति कहीं भी भावना होती है मतलब ये जानकार है और विशेष स्पष्टीकरण यहाँ से मिलेगा तो उसको इस विषय में और दिलचस्पी हो जाए ऐसी भावना होगी भावना मैंने प्राप्ति की भावना तो हो जाए तो प्राप्ति की भावना क्रिएट करने के हेतु हमने इस विषय को छेड़ा है ऐसा कर ऐसा अभिप्राय है। आप हमारे संघ में 3 साल से हैं और विज्ञान का विषय ही नहीं चल रहा है आपस में तो विज्ञान के विषय में आपकी भावना उत्पन्न करने के लिए हमने ऐसी 2-3 पंक्ति खुले कागज में लिख दिया पोस्ट कार्ड में। कदापि ऐसा अनुमान करने में आए कि उसकी कहीं कहीं संज्ञा उसके विषय में हुई हो और यह स्पष्ट लिखावट पढ़ने से उसको विशेष संज्ञा हो करके अपने आप वह निर्धार में आ जाए परंतु यह निर्धार ऐसे नहीं होता। क्या बोले आपको कदाचित ऐसा अनुमान लगे कि ऐसी ऐसी कुछ बात हमारी चर्चा में तो आगे से चली आ रही है हमारे नाम में तो कोई ऐसी ऐसी संज्ञा मैंने कोई ऐसी बात का आसार उसको अनुमान में आया है कि कोई विज्ञान जैसी कोई चीज है और ऐसा स्पष्ट लखान लिखावट मिलने से लिखी हुई बात मिलने से उसको लखान कहते हैं विशेष उसको संज्ञा हो जाए मैंने विशेष ज्ञान हो जाए और उसका उसको भाषण हो जाए ऐसा मान लेना मत ऐसा मत मान अपने आप निर्धार हो जाए ऐसे तो निर्धार होता नहीं यथार्थ इसके स्थल का जानना इससे हो सकेगा नहीं ऐसे लिखने से देंगे तो कोई इसका ज्ञान हो जाएगा यथार्थ ज्ञान हो जाएगा वो भी बनने वाला और उसी कारण से जीव को विक्षेप की उत्पत्ति होती है यही विक्षेप कराने के लिए लिखा था कि आपको जानने को तो हमारे लिखावट से तो कोई समझ में बात आ जाएगी नहीं निर्धार हो जाएगा नहीं आप इस विषय में कुछ समझना तो चाहते हैं ऐसी तो बात है आपका ध्यान गया है लेकिन उभापो नहीं चलता है विक्षेप मैंने क्या वहाँ को भीतर में होना ये कैसे कैसी बात होगी ये भावभाषण क्या चीज होगी कैसे होगा किस प्रकार की ये बात है घटना कौन सी भीतर में होती है ऐसा उभापो इसको विक्षेप बुलाया इधर जो उभापो नहीं होता तो अविक्षेप परिस्थिति है वो अच्छी नहीं है क्या ठीक है शास्त्र पढ़े जा पत्र लिखे जा ये बात ऐसी नहीं है परमार्थ के विषय में तब ही उसी जीव को के परिणाम में परमार्थ देने वाला कोई परमार्थ देता है तो उसको ग्रहण करने का अवकाश है होता है खाली जगह इसके पहले खाली जगह नहीं है तो खाली जगह करवाई पहले कितना विचक्षण थे वो कि देखा कि हमको विक्षेप नहीं हो रहा है वहां पर नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे तो पकड़ेंगे बात को ग्रहण नहीं करेंगे तो पहले विक्षेप डालो, जानबूझ कर विक्षेप डाला, तो सुधारस क्या होगा? विज्ञान तो सुना था, बड़ी सुधारस कहाँ से आया बीच में? क्या कोई अमृत की बात है? कैसी बात होगी सुधारस में? ना कैसा होगा, किस प्रकार की घटना होगी? क्योंकि तो उसमें बरसता है ऐसा लिखते हैं, तो उनको भीतर में जिज्ञासा खड़ी कर दी और तीव्र जिज्ञासा में आ जाए। ऐसे हमारी कोई बात बीच मन में थी, इसलिए वो चिट्ठी लिखी थी। उसका खुलासा करता है, हमने क्यों ऐसी चिट्ठी लिखी? इस कारण से जीव को विक्षेप की उत्पत्ति होती है कि यह बात किसी भी प्रकार से जानने में आ जाए तो अच्छा, उसकी भावना हो जाए, ये विषय कैसे जैसे कैसे भी उसको ग्रहण हो जाए तो अच्छा। और यहाँ से लेने के लिए उसकी भावना तीव्र हो जाती है। कितनी करुणा की है, अगले को भावना नहीं होती तो भावना कराने के लिए छेड़ते हैं विषय को। और बहुत ट्रिक से बात रखते हैं, युक्ति से रख देते हैं। तो हवे ऐसा पढ़ा है, शांत होकर के ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा खलखली हो जाए फिर अंदर जगह होगी। बहुत विशिक्षण हो
जाएगी, खड़बड़ाहट हो जाए, अंदर खड़बड़ाहट हो जाए,
जिज्ञासा वगैरह विचार की भूमिका में बिना जिज्ञासा सत्य को स्थान पाने की जगह ही नहीं होती। सत्य मिल जाए तो भी ऊपर से जाता है, क्योंकि वहां तो जगह है नहीं, स्थान नहीं पाएगा, ये बात बन जाएगी। इसलिए जो प्रश्नोत्तर रूप में शास्त्र लिखे गए हैं या ज्ञानी है आचार्य है वो प्रश्न उठा करके उत्तर देते हैं, इसका यही कारण है इधर जिज्ञासा में आ जाओ। इस उत्तर सुनने के लिए तुम्हारे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। इस प्रकार की जिज्ञासा होगी तो ये उत्तर आपको समझ में आएगा, वरना उत्तर समझ में
नहीं। जो प्रश्न पूछता है उसको जवाब देता है, ऐसा समय सार में ऐसा क्रम लिया।
उसको गरज है, उसको गरज है, वरना क्या करता है? ये श्लोक है, आप इसका अर्थ सुन जाइए। प्रश्नकार क्या कर देता है, ये दो चार फलाने शास्त्र के वचन हैं, इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। क्या जैसे हमको तो कोई उसमें हमारा क्या कौन सी समस्या है वो नहीं निकालते हैं। वो उत्तर प्रश्न है, वो उत्तर को खींच करके ले आता है। प्रश्न होना ही चाहिए, जिज्ञासा होनी ही चाहिए, जब ये उत्तर है तो अंदर में आएगा, वरना उत्तर सुन जाएगा।
अगर एवं थे तो कोई ये कैसे गानो शू थे प्रश्न पूछो, एम नहीं
तो दूसरा एक हेतु था कि गुरुदेव के समाज में ज्ञानी होने पर भी महीनों का व्याख्यान की पद्धति परंपरा वो नहीं चाहते थे, इसलिए व्यंश्री को ज्ञान होने पर भी कभी इसका व्याख्यान का आयोजन नहीं हुआ है कि चलो मैं एक महीना इधर हूँ और इधर कोई संगठन में नहीं है तो बेंच में व्याख्यान करेगी, ऐसे पद्धति परंपरा
नहीं।
दूरंदेशी दृष्टि से ये बात उन्होंने परंपरा में नहीं रखी। क्यों? मैंने भी एक उम्र से तो होगी नहीं, छोटी उम्र बड़ी उम्र कम होती है, वो व्याख्यान चलेगा, भाई लोग सुनने को बैठेगा, बात तो कई प्रकार की चलेगी। इधर तो एक ऐसे शास्त्र के अनेक प्रकार के दृष्टांत, अनेक प्रकार की बातें शास्त्र में आती है, तो कई प्रकार के उल्टे सुलटे प्रश्न बनने की इसमें संभावना है। आगे जाकर के ऐसी परंपरा चले तो कहीं प्रकार की गड़बड़ हो जाने की संभावना देख करके उन्होंने ये पद्धति नहीं रखी कि कोई बहन ज्ञानी भी हो तो प्रवचन दे और समाज सुनने को बैठे हैं, ये बात
नहीं
चालू है। ज्ञानी होने पर भी ये बात चालू है, उसको बहुत दुरंदेश है। तो ये बात चालू हो जाएगी, एक बहन, दो बहन, चार बहन, फिर कितने, जैसे पंडित बहुत होते हैं ऐसे पंडिता बहुत हो जाएगी, बहुत पंडित होते तो पंडिता भी बहुत हो जाएगी। ज्यादा पंडिता हो जाने से कभी कभी क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, क्या ना, इसलिए लिमिट में बात होती है। इसलिए बहन चल जाएगी, बाद में बोल दी तो सब में चलेगी, और प्रवचन चालू नहीं किया उन्होंने अपना, प्रवचन चालू नहीं किया तो ज्ञान तो इसके पास है, ज्ञान का जो ज्ञानार्जन जिसको करना है वो तो उनके पास जाएगा। बोले तो तुम्हारी जिज्ञासा हो तो उत्तर देंगे, अगर तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो हम उत्तर दे सकते हैं, बाकी हम प्रवचन प्रवचन करने वाले वो बात ठीक है, बात की वो होती है, प्रश्न पूछो तो हम उत्तर देंगे। शास्त्र लेकर के प्रवचन करने को बैठ जाएंगे ऐसा कभी नहीं,
हमारी आनो फकरानो शू तो ये प्रश्न शू है, हम
प्रश्न हो तुम्हारा जिज्ञासा उत्तर दे सकते हैं। प्रवचन करने को हम बैठे, कभी आज्ञा दी नहीं थी, आज्ञा देते तो बस अलग बात थी, लेकिन आज्ञा दी नहीं उन्होंने अपने जीवन में। 45 साल सोनगढ़ में रहे भी रही, आज्ञा नहीं दी कि तुमको प्रवचन करना, हम चले जाने के बाद तुमको प्रवचन, ऐसा भी नहीं आज्ञा दी, वो तुमको आज्ञाकित थे, एक एक बात को समझते थे, इसमें भी कोई राज है, कोई रहस्य है, बुद्धि की दृष्टि है। ज्ञानी पुरुष महापुरुष होते हैं, बहुत शिक्षण होते हैं, महाप्रज्ञावंत होते हैं, बहुत जितना भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, छोटी मोटी बात ऐसे वो भी पकड़ते ना, ऐसे ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं किया तो नहीं करना है, किया तो करना है, क्योंकि इसकी परंपरा चल जाएगी। आज ये हमारे यहाँ कुछ मैंने प्रवचन कर दी, गुरु आज्ञा नहीं है, ऐसी बात
है, गुरु आज्ञा धीरे धीरे दर्शन होने की जरूरत है।
होता है ज्ञान प्राप्ति हो सकती नहीं है, जैसे दृढ़ दृष्टि प्रकाश में ये हुआ, मैं रोक लगा दिया, पाबंदी कर लिया, रिस्ट्रिक्शन आ गया, मैं मेरे हाथ से दूंगा, तो उसके पहले हमारे हाथ से कोई 5 नकल छूट गई थी, हमारे जो परिचय में थे वो लोग, उन लोगों को हमने पढ़ने को दिया था कि ये ग्रंथ पढ़ने लायक, हमने वापस मंगा लिया, ऑर्डर किया है हमारे हाथ से देते, तो देख देख करके दे, सबको नहीं देते
नहीं।
कुछ सुगानी जी के घर से उनकी पत्नी आई तो उन्होंने मांगा, हमने तो नहीं दिया, उनको भी नहीं दिया, जबकि प्रकाशन उनके वर्ष था, परेशान हमारा था, नहीं दिया तो देंगे आप, एक नकल दिया, बोले कि आपको तिजोरी में रखने का है, घर में लड़के को नहीं पढ़ाना, लड़के की बहू को नहीं पढ़ाना, कोई मेहमान विवाह आए उसको नहीं पढ़ाना, किसको नहीं देना, तिजोरी में रखना, तुम पढ़ना, दूसरे को मत देना। महाराज को तो 25 नकल चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, एक ही नकल मिलेगा, बोला क्या नहीं, बोला नहीं, बोलेगा प्रकाशन इनके वर्ष था, तो क्या समझे कि हमारे जो सगे संबंधी हैं संबंधी सबको एक एक नकल भेजेंगे, नहीं एक ही मिलेगा, 25-25 नकल नहीं मिलेगा, कड़क टोन में
बोले,
कोई पढ़ेगा घर का लड़का बड़का तो मंदिर जाना बंद हो जाएगा, क्या इसका तो मंदिर जाएगा तो मंदिर जाने का मन कर देगा, ऐसा हो जाएगा, बात निश्चय की बात थी, बच्चा पास हो जाए जल्दी से, इसलिए किसको नहीं पढ़ाना, ऐसा सूचना करके एक एक को पकड़ पकड़ कर
देते,
ऐसी सूचना करते थे, फिर भी कोई चोरी से पढ़ ले किसी के यहाँ से, तो ऐसे चोरी से पढ़ने से कोई उसको ज्ञान मिल जाए?
नहीं नहीं,
ऐसा नहीं करता। उनको ये पता होना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से कोई ज्ञान प्राप्ति होगी
नहीं।
क्यों? कि अभी नहीं तो हो ही गया। ज्ञान तो विनय से प्राप्त होता है, अभी नहीं से कोई ज्ञान प्राप्ति होती है क्या? वही नहीं सकती ऐसी बात।
पेशमत ही कॉपी करी, पेशमा आप ही कॉपी करी हो।
हाँ, तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसने गुरुदेव पर रिस्ट्रिक्शन कर रखा हो, इसमें क्या होगा, सब लोगों को ये हो गया, क्यूरियोसिटी होगी।
बहनों बहना में तो स्वाध्याय चलते ना,
वो गुरुदेव की आज्ञा
से बहनों बहनों में स्वाध्याय चलते,
वहाँ भाइयों को अलाउ नहीं करते थे समाज के बीच में। तो ब्रह्मचारी बहने बहुत कुछ थी, दूसरे भी लोग वहाँ ठहरते थे, बहने सब जाते थे वहाँ से पता गया। आप लोग तो स्वाध्याय शास्त्र स्वाध्याय चलता वो कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। महिला सभा में कोई बहन ज्ञानी हो या विशिष्ट समझदार हो वो स्वाध्याय करा सकती है, लेकिन समाज के बीच में नहीं। अंतर है बहुत। नहीं, बात निकलती है। एक ऐसा भी प्रकार समझने योग्य है, तीसरा, मैंने तीसरी बात अब कह रहे हैं, मैंने एक ऐसा भी प्रकार समझने योग्य है कि सत्पुरुष की वाणी स्पष्ट रूप से लिखी गई हो तो भी उसका परमार्थ, सत्पुरुष का सत्संग जिसने आज्ञांकितपना से नहीं किया उसको समझाना दुर्लभ है। समझ पाएगा?
स्पष्ट बात आई,
यही बात आई। कितने भी स्पष्ट बात लिखी लिख करके गए हो, वाणी स्पष्ट लिखी गई
बराबर,
फिर भी इसका परमार्थ जिसने सत्पुरुष का सत्संग आज्ञांकितपना से हुआ नहीं वो उसका परमार्थ समझने के लिए लायक होगा
नहीं,
आज्ञांकितपना दिया
नहीं भी
का विषय है। नहीं। 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 ये परम विनय तो बात ही अलग है, तो परमेश्वर बुद्धि आती है, लेकिन सत्संग में गया आज्ञांकितपने नहीं गया उसको परमार्थ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतना विनय में अवकाश होता है। विनय है वो तो गरज को सूचित करता है, वो पात्रता को सूचित करता है, सब काम होता है। बिना पात्रता को परमार्थ समझ में सत्संग में जाना नहीं, अज्ञानकितपने सत्संग में गया उसको ही परमार्थ समझ में आएगा। स्पष्टता मिलने से कोई बात समझ में आ जाती है ऐसी बात नहीं। हमारी बुद्धि में बहुत स्पष्ट हो गया ये बात, ऐसे परमार्थ नहीं मिलता है अज्ञानकितपने से सत्संग का में आना हुआ परमात्मा में। विनय से आज्ञा में रह करके आज्ञा बार मुझे नहीं जाना है, जितने नहीं रहना है, आज्ञा अंकित आज्ञा की मर्यादा में रहना, उल्लंघन नहीं करना, ऐसा कितना विनय भाव उसको होता है। मैं तो आज्ञा से बाहर मुझे जाना नहीं है, किसी भी कारण से, किसी भी प्रसंग से, किसी भी बहाने
जी
हमें आज्ञा के छोड़ करके आगे जाना नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसको भी नहीं होता है उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं, भले ही सत्संग में आता हो, ये कंडीशन है, शर्त है, पर यह सहज होता है। पात्रता वाले को ऐसा सहज होता है, नहीं होता है उनके लिए समझाते हैं, एकदम बड़ी हो जाएगी तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। नानी का आश्रित ये शब्द प्रयोग
आश्रित
इसलिए ज्ञानी का वो आश्रित है और उसको आश्रय भक्ति भी वर्तती है, उससे भी काम हो
सद्गुरु देवनो जय प्रसन्नमूर्ति भगवती मातनो जय।